राजवंश महल में शाम का समय था। अभिमन्यु इप्सिता से मिलकर महल लौट आया था। अभिमन्यु के चाचा नरेंद्र राजवंशी अपने कमरे में पहुंचे, जहां उनकी पत्नी पल्लवी गुस्से से मुंह फुलाकर बैठी थी। जैसे ही नरेंद्र ने पल्लवी को गुस्से में देखा, वो अपना कोट उतारते हुए बोले, क्या बात है पल्लवी, आप इतने गुस्से में क्यों बैठी हैं? पल्लवी ने नरेंद्र की बात का कोई जवाब नहीं दिया। नरेंद्र ने पानी पीकर आराम से सोफे पर बैठते हुए कहा, आज तो हम बहुत थक गए। पता है तुम्हें आज ऑफिस में कितना काम था, और ऑफिस में दोनों मीटिंग हमें ही अटेंड करनी पड़ी। पता नहीं अभिमन्यु कहाँ चला गया था। पल्लवी ने जैसे ही नरेंद्र के मुंह से ये बात सुनी, वो गुस्से से तिलमिला उठी। उसने कमरे का दरवाज़ा पटक कर बंद किया और नरेंद्र के सामने आकर चिल्लाते हुए बोली, आप बस इसी तरह ऑफिस की मीटिंग ही करते रह जाएंगे और आपका वो भतीजा महाराज की गद्दी पर बैठ जाएगा, वो भी बहुत जल्द। पागल हो गई हैं आप, कैसी बातें कर रही हैं, वो भला क्यों महाराज की गद्दी पर बैठेगा? नरेंद्र ने पल्लवी की बात सुनकर उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, क्योंकि बहुत जल्द आपका भतीजा शादी करने वाला है, और उसके 26वें जन्मदिन से पहले अगर उसने शादी कर ली तो मिल चुकी फिर आपको राजगद्दी। पल्लवी ने कहा, चुप रहो और ऐसी अशुभ बातें अपने मुंह से निकालना भी मत। तुम्हें नहीं पता हम उस राजगद्दी को पाने के लिए कब से इंतजार कर रहे हैं, और वो राजगद्दी हमारी है। हमारे होते हुए अभिमन्यु राजगद्दी पर कभी नहीं बैठ सकता। जानती नहीं हो तुम हमने कितने पापड़ बेले हैं अभी तक, और जब तक हमें वो राजगद्दी नहीं मिल जाती हम चैन से नहीं बैठेंगे। नरेंद्र ने पल्लवी को डांटते हुए कहा, आप बस सोचते रह जाएंगे और आपका भतीजा पूरे राजमहल पर अपना कब्जा कर लेगा। आप जानते नहीं आपकी भाभी सा किस किस तरह की प्लानिंग प्लॉटिंग में लगी हैं। उन्होंने अभिमन्यु को किसी लड़की से मिलने भेजा था आज, इसीलिए अभिमन्यु ऑफिस नहीं पहुंचा। आपको बस ऑफिस के कामों में फंसाकर यही सब किया जा रहा है, और आपको इस बात की भनक भी नहीं है। ये तो हमने आज सुबह भाभी सा को फोन पर बात करते हुए सुन लिया था, तो हमें भी ये बात पता चल गई, वरना आपकी भाभी सा तो ये सब बताने से रहीं। पल्लवी ने गुस्से से कहा, अच्छा तो इसका मतलब मेरी पीठ पीछे ये सब चल रहा है। पल्लवी, पता करो जरा कौन है वो लड़की जो अभिमन्यु की दुल्हन बनने वाली है। हम अपने इतने सालों की मेहनत इस तरह पानी में जाते हुए नहीं देख सकते हैं। नरेंद्र ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा, देखिए हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता नहीं कि भाभी सा हमें कुछ भी अपने मुंह से बताने वाली है, इसलिए हमें इधर उधर से ही जुगाड़ करके सारी चीज पता करनी होगी। आप भी अब थोड़ा अपनी आंखें और कान खुले रखिएगा ऑफिस में। देखिए अभिमन्यु कहाँ जाता है, किससे मिलता है। पल्लवी नरेंद्र के बगल में बैठते हुए बोली, हाँ वो तो मैं पता करवा ही लूंगा। नरेंद्र ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा। वहीं दूसरी ओर अभिमन्यु अपने कमरे में सोफे पर बैठे लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। जैसे ही अभिमन्यु ने लैपटॉप बंद किया, उसने अंगड़ाई लेते हुए कहा, चलो आज की मीटिंग भी अच्छे से हो गई और मैंने इस डील को भी डन कर लिया। अभिमन्यु ने अंगड़ाई ली और सोफे से टेक लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही अभिमन्यु ने अपनी आंखें बंद की, एकदम उसके सामने इप्सिता का चेहरा आया। इप्सिता का चेहरा सामने आते ही अभिमन्यु ने झट से अपनी आंखें खोलते हुए कहा, ये क्या था, हमें इप्सिता का चेहरा क्यों नजर आया? ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही मीटिंग में वो लड़की हमारे दिमाग में कैसे बस सकती है? नहीं नहीं, हम ये सब क्या सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भला हमारे दिमाग में क्यों बसेंगी और हम क्यों उनके बारे में सोच रहे हैं? हम तो किसी के बारे में सोच ही नहीं सकते, अभिमन्यु ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा। अभिमन्यु ने ना में अपना सिर हिलाया और अपनी जगह से उठकर वो सीधे वॉशरूम में गया। पानी की छींटे अपने मुंह पर मारते हुए अभिमन्यु ने अपना चेहरा आईने में देखा और इप्सिता के बारे में ही सोचने लगा। अभिमन्यु को सारी रात ठीक से नींद नहीं आई। बार बार उनकी आंखों के सामने इप्सिता का चेहरा आ रहा था। अभिमन्यु समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? हम आज से पहले न जाने कितनी लड़कियों से मिले हैं, लेकिन हमें कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों हम बार बार राजकुमारी इप्सिता के बारे में सोच रहे हैं? अभिमन्यु ने अपने मन में कहा। बड़ी ही मुश्किल से अभिमन्यु को नींद आई। वहीं इप्सिता बिल्कुल सामान्य थी, बस कहीं न कहीं उसके मन में अभिमन्यु के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ रही थी। अगले दिन सुबह सूर्यवंशी हवेली में इप्सिता आराम से अपने कमरे में सो रही थी कि तभी उसका मोबाइल फोन बजा। इप्सिता नींद में थी और उसने हाथ बढ़ाकर फोन की आवाज़ बंद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और मोबाइल की रिंगटन बंद हो गई। लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर से इप्सिता का फोन बजने लगा। इप्सिता ने आंख मलते हुए अपना मोबाइल फोन उठाकर देखा तो उसकी दोस्त नंदिनी का इनकमिंग कॉल था। इप्सिता ने कॉल रिसीव करते हुए कहा, क्या बात है नंदिनी, तुम हमें ठीक से सोने भी नहीं दे रही। कल भी तुमने हमें ऐसे ही उठाया था और आज भी। ओ माय डियर प्रिंसेस, उठ जा यार, अपनी आंखें खोल, यहाँ मेरी नींद उड़ गई है और तू आराम से वहां सो रही है, नंदिनी ओवर एक्साइटेड होते हुए बोली। क्यों, अब क्या हो गया वहां पर जो तुम्हारी नींद उड़ गई? इप्सिता ने उबासी लेते हुए कहा। तुझे पता है कल रात में मैंने तेरे होने वाले हस्बैंड और अपने होने वाले जीजू का नाम गूगल पर सर्च किया। तुझे पता है उनकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन निकल कर आई उसे पढ़कर तो मेरी नींद ही उड़ गई। तुझे पता है मैं ठीक से रात में सो भी नहीं पाई यार। मैं तो अब कुंवरसा से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। बता कब मिलवाएगी तू मुझे उनसे, नंदिनी ने कहा। इप्सिता नंदिनी की बातें सुनकर चौंक गई। अभी तक जो नींद में थी उसकी सारी नींद उड़ गई और उसने कन्फ्यूज होते हुए कहा, तुम क्या कह रही हो नंदिनी, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा।
ठीक है, मैं तुझे पूरी बात समझाती हूँ। देख, तूने मुझे बताया था ना कि तेरे होने वाले हस्बैंड का नाम अभिमन्यु राजवंशी है। मैंने जैसे ही विकिपीडिया पर अभिमन्यु राजवंशी नाम सर्च किया, वहां अपने जीजू की हॉटनेस देखकर मैं तो उन पर फिदा ही हो गई। और तू है कि उनसे लड़कर चली आई, इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती है तू? तुझे पता है राजस्थान का सबसे बड़ा राजघराना तेरा ससुराल होने वाला है और अभिमन्यु राजवंशी को कुंवरसा कहा जाता है। और सोच, जैसे ही तेरी उनसे शादी होगी, उनका राज्याभिषेक होगा और वो उस राजमहल के महाराज बन जाएंगे और तू उनकी रानी। यार सच में क्या किस्मत पाई है तूने, नंदिनी ने उसे बताते हुए कहा। तुमने हमें ये सब बताने के लिए हमारी नींद से जगा दिया, हम ये सब तो पहले से ही जानते हैं डफर, इप्सिता ने इरिटेट होते हुए कहा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मिस्टर अभिमन्यु की इंटरनेट पर जो फोटो हैं, उनमें तो वो इतनी ज्यादा हॉट और हैंडसम लग रहे थे। अरे मेरा मतलब है जीजू वाली नजर से ही देखा मैंने, और इसीलिए मैं तो कह रही हूँ तू छोड़ अपने सपने को और जल्दी से जल्दी शादी कर ले, क्योंकि उस राजमहल की रानी बनते ही तेरे सारे सपने तो ऑटोमेटिक पूरे हो जाएंगे। कोई भी चीज तेरे एक इशारे पर तुझे मिल जाएगी, तुझे तो किसी चीज की परेशानी ही नहीं होगी। यार तेरी किस्मत कितनी अच्छी है जो तू एक रॉयल फैमिली से है, नंदिनी ने फिर से इस तरह एक्साइटेड होकर कहा। जस्ट शट अप नंदिनी, ये रॉयल फैमिली दूर से दिखने और सुनने में जितनी अच्छी होती है, इसकी रियलिटी उतनी ही ज्यादा हार्श होती है। तुम नहीं जानती हमें यहाँ पर क्या क्या झेलना पड़ता है। यहाँ पर मिलने वाली लग्जरी लाइफ और सारी फैसिलिटीज के साथ साथ हमारे सपने, हमारे ओपिनियन और हमारा फ्रीडम सब कुछ छिन जाता है। तुम्हें हमारे सैक्रिफाइसेस के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसीलिए ये सब कुछ तुम्हें बहुत अच्छा और कूल लगता है, इप्सिता ने फ्रस्ट्रेटेड होकर चिल्लाते हुए कहा।
डोंट ओवर रिएक्ट यार, इसी में तो बस इतना बोल रही थी कि एक तरह से अच्छा ही है, और फिर वो दिखने में अच्छा है, हो सकता है दिल का भी अच्छा हो, तो तेरे सपने में भी तुझे सपोर्ट कर सकता है जो तू करना चाहती है, नंदिनी ने भी अब थोड़ा इरिटेट होते हुए कहा। काश तुम हमारी जगह होती तो तुम्हें पता चला कि हम इस राजघराने की बंद चार दीवारियों में कितनी घुटन महसूस करते हैं, पर तुम हमारी वो घुटन कभी महसूस नहीं कर सकती। बट चलो फोन रखो, हम फ्रेश होने जा रहे हैं, इप्सिता ने एक ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा। इप्सिता की ऐसी आवाज़ सुनकर नंदिनी समझ गई कि वो कॉल डिस्कनेक्ट करने वाली है, इसीलिए वो उसे रोकते हुए बोली। अरे यार रुक तो, तू तो नाराज़ हो गई, और मैं तो बस ये बोल रही थी कि एक तरह से अच्छा ही है, और फिर वो दिखने में अच्छा है, हो सकता है दिल का भी अच्छा हो, तो तेरे सपने में भी तुझे सपोर्ट कर सकता है जो तू करना चाहती है। नहीं यार मैं नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है हम दोनों की लाइफस्टाइल एकदम अलग है, इसलिए तू कभी ये सब नहीं समझ सकती। और मैं तो ये सोचती हूँ कि काश मैं किसी नॉर्मल फैमिली से होती और इतनी जल्दी मेरे घर वाले मेरी शादी के पीछे नहीं पड़ते, मेरे पास भी थोड़ा टाइम होता तो फिर मैं भी वो सब कर पाती जो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन अभी तो शायद इन सब चीज़ों के बारे में सोचने का भी कोई मतलब नहीं है। और रही बात उनके सपोर्ट करने की, तो मुझे ऐसी कोई भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ वहाँ पर कितने ज़्यादा नियम कायदे और कानून होंगे, और बहू के लिए तो कुछ ज़्यादा ही, इसीलिए मुझे ऐसी कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी से भी, इप्सिता ने बहुत ही समझदारी से उसे जवाब देते हुए कहा। इप्सिता की ये सारी बातें सुनकर नंदिनी कुछ भी नहीं बोल पाई। फिर कुछ देर नॉर्मल बातें करने के बाद इप्सिता ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और वो फ्रेश होने के लिए चली गई क्रमशः।